हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो आज हम आठवें स्कंद के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है इंद्र द्वारा असुरों का संहार। श्लोक नंबर 8 यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, आप मेरे साथ साथ दोहराइएगा। तत् इदं कालरशनम् तत् इदं कालरशनम् जगत पश्यन्ति सूरयः जगत पश्यन्ति सूरयः न ऋष्यन्ति न शोचन्ति न ऋष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम् अपण्डितः धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की तत्र तथा अते इदम थोड़े उत्साह के साथ बोलिए प्लीज। इदम यह संपूर्ण भौतिक जगत काल रशनम काल के कारण गतिमान जगत आगे बढ़ता पश्यन्ति देखते हैं सूर्य सत्य से अवगत होने के कारण जो बुद्धिमान है ना नहीं ऋष्यन्ति हर्षित होते हैं ना ना तो शोचन्ति पछताते हैं तत्र ऐसे में यूयम तुम सारे देवता अपंडितः पंडित नहीं हो। अनुवाद मेरे साथ साथ दोहराइएगा। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए ना तो हर्षित होते हैं ना सोच करते हैं क्योंकि तुम लोग अपनी विजय पर हर्षित हो अतः तुम्हें अत्यंत विद्वान नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य सुनेगा। बलि महाराज जानते थे कि स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत शक्तिशाली है और उनसे तो निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। फिर भी बलि महाराज ने यह कहकर प्रतिवाद किया कि इंद्र बहुत विद्वान पुरुष नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर फटकारा कि अशोचा नाम अनवशोचास्तम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुना अगता सुनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तुम बुद्धिमान की बातें करते हुए भी उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो लोग चतुर हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना मरे हुए के लिए। इस प्रकार जैसे कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए फटकारा कि वह पंडित नहीं है, बलि महाराज ने भी इंद्र तथा उसके पार्षदों को फटकारा। इस भौतिक जगत में काल के अधीन ही सब घटित होता है। फलस्वरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति के लिए जो यह देवता है कि जो ये देखता है कि किस तरह घटनाएं घटती हैं, प्रकृति की लहरों के कारण दुखी या सुखी होने का प्रश्न नहीं उठता। आखिर जब हम इन लहरों द्वारा बहाकर ले जाए जा रहे हैं तो हर्षित होने या खिन्न होने से क्या लाभ। जो प्रकृति के नियमों से भली भांति अवगत है वे प्रकृति के कार्यकलापों के कारण कभी ना तो हर्षित होता है ना खिन्न। भगवद गीता में कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य सहिष्णु बने तांस्तु भारत। कृष्ण के इस उपदेश का पालन करते हुए मनुष्य को परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण ना तो खिन्न होना चाहिए ना प्रसन्न। यह भक्त का लक्षण है। भक्त कृष्ण भावना मृत में अपना कर्तव्य पालन करता है और विषम परिस्थितियों में भी अप्रसन्न नहीं रहता। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसी परिस्थितियों में कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अतएव भक्त भक्ति के अपने नियत कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। हर्ष तथा विषाद जैसे भौतिक गुण देवताओं तक में रहते हैं, जो उच्च लोक में अच्छा स्थान ग्रहण किए हुए हैं। अतएव जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत की तथा कथित अनुकूल तथा प्रतिकूल दशाओं में अविचलित रहता है, रहता तो उसे ब्रह्मभूत या स्वरूप सिद्ध समझना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। जो दिव्य पद पर स्थित है वे तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात करता है और पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक दशाओं से विचलित नहीं होता तो उसे दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर है। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रसंग है ये किनके बीच में चल रहा है, किनके बीच का संवाद है? ये बलि महाराज और इंद्र। तो कौन किसको उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर? किनको दे रहे हैं? इंद्र को। तो भागवतम में कई जगह पर, वैसे देखिए श्रीमद् भागवतम में कई ऐसे कथाएं हैं जिसमें सुरों और असुरों के बीच में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। इस भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब भगवान कृष्ण अवतरित हो रहे थे इस भौतिक जगत पर, भगवान वैसे कभी भौतिक जगत पे आते नहीं, भगवान का धाम जो है स्वयं प्रकट होता है, पर भगवान जब यहाँ पर आ रहे थे तो जितने देवी देवता हैं उन सब ने यहाँ पर जन्म लिया, देवी देवताओं ने, जितने भी भगवान के भक्त हैं उनके रूप में, और जितने भी सेलेस्टियल डेमन्स हैं वो सब भी आए थे। और उन्होंने किस किनका रूप लिया? जितने कौरव थे उनका। तो दरअसल महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध भी चल रहा था वो किस प्रकार का युद्ध था, जैसे सुरों और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा है, दानवों और देवी देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही था। तो तो भागवतम में कई जगह पर ऐसा वर्णन आ रहा है कि सुरों और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा है, और यहां पर भी बलि महाराज युद्ध के बीच में इंद्र से, इंद्र को यह बता रहे हैं कि क्योंकि इंद्र बहुत खुश थे, बलि महाराज उनको बता रहे हैं यहां पर कि किस प्रकार से जो व्यक्ति ये जो सुख और दुख उनको मिल रहे हैं ना, प्रभुपाद यहां पर इसमें तात्पर्य में कोट करते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म भूत में स्थित व्यक्ति है ना तो शोक करता है ना फिर किसी चीज को लेकर हैंकर करता है, नो लेमेंटेशन नो हैंकरिंग, किसी चीज की कामना नहीं करता। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो भी सुख दुख हम अपने जीवन में अपने दिनचर्या में महसूस कर रहे होते हैं दरअसल दुखी होते हैं। व्यक्ति शोक किन चीजों के लिए करता है, उन चीजों के लिए या तो उसके पास नहीं है या फिर थी उसके पास और छिन गई। और कांक्षती है ना, और चाहना, मोर 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 है ना, ये दिल मांगे मोर है ना, बहुत कुछ चाहिए होता है उसको है ना, बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ हासिल करना चाहता है ना, जब उसको मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाता है, नहीं तब और कुछ चाहिए होता है, दुखी रहता है हमेशा, और जब नहीं मिलता तो फिर नेचुरल दुखी होना बनता है। तो ये दोनों ही परिस्थितियां, चाहे वो शोचती हो या कांक्षती हो, दोनों ही हमें अल्टीमेटली क्या देती है, दुख, मिजरीज। तो ये जो सुख और दुख इस भौतिक जगत में जो बताया गया है, सुख और दुख, ये उसी प्रकार का सुख और दुख है जैसे एक व्यक्ति जेल में हो। इस भौतिक जगत में वैसे तो श्री प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में अपने लेक्चर्स में इस भौतिक जगत की तुलना कई चीजों से की गई है, पर श्री प्रभुपाद ने तुलना की है इस भौतिक जगत की जेल से। एक व्यक्ति अगर जेल में रह रहा है तो नेचुरली को जेल में रह रहा है तो उसको बहुत दुख उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है जेल में, उसको अपनी फैमिली के साथ अपने सगे संबंधियों के साथ नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंट नहीं है, जहां घूमना चाहे वहां घूम नहीं सकता। पर क्या होता है जब व्यक्ति बहुत लंबे समय तक इस जेल में रह लेता है तो इसी में सुख और दुख ढूंढ लेता है। किसी दिन कम मार पड़ी तो उसको लगता बहुत सुख है ना, आज तो दो डंडे मार के चले गया पुलिस वाला, रोज तो बहुत पड़ती थी। किस दिन रोटी पे थोड़ा घी लग के मिल गया, तेल लग के मिल गया तो उसको लगता है वाह आज तो बड़ी सुख की बात है ना। तो दरअसल वो जेल का सुख है वो, है ना, वो सुख नहीं है। श्रील प्रभुपाद तुलना करते हैं इस भौतिक जगत की एक हॉस्पिटल के साथ, है ना, आजकल इतनी बीमारियां चल रही हैं और खासकर जो बीमारी है चिकनगुनिया वगैरह, व्यक्ति के शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं होता जिसमें दर्द नहीं हो रहा होता, एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है उसको, है ना, मतलब या तो व्यक्ति एक्सटेसी में इतना तड़पता है या तो फिर चिकनगुनिया में इतना तड़पता है, उसकी ऐसी हालत होती है उस व्यक्ति की ना? तो पर इतनी इस परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति जब हॉस्पिटल में तड़प रहा होता है ना, डॉक्टर आके उससे पूछता है आप कैसे हो ना, वो कहता है डॉक्टर साहब अच्छा हूं ना, आज कल से कम दर्द हो रहा है। उसके लिए खुशी की बस वही परिभाषा है, कल से कम दर्द हो रहा है, ये खुशी है उसके लिए ना? तो भौतिक जगत के जो भी व्यक्ति हैं जो यहां पर रह रहे हैं, एक्चुअली हमने यहां पर सिटीजनशिप ले ली है भौतिक जगत की, तो यहां पर हम इतने लंबे समय से सेटल हैं कि यहां के हर दुख की चीज को हम सुख मान जाते हैं, ये खुशी की बात है, यही खुश है मेरे लिए ना? कल से कम दर्द हो रहा है ये खुशी की बात है, कल से कम मार पड़ी ये खुशी की बात है। दो दुखों के बीच का जो एक थोड़ा सा इंटरवल चल रहा होता है, ब्रेक, अगला आने वाला है, बस थोड़े समय के लिए पॉज हुआ है ना, उसको हम क्या डेफिनेशन देते हैं, खुशी की, है ना, कि मैं एंजॉय कर रहा हूं इस भौतिक जगत में, है ना, खुश हूं मैं कितना इस भौतिक जगत में। साथ में इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो भक्त होते हैं वो बहुत हार्ड हार्टेड हो जाते हैं कि चलो ठीक है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती, श्री श्री राधा राधिकरमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की। इसका मतलब यह भी नहीं कि जो भक्त है जो भौतिक जगत में अगर देखते हैं कि कोई परिस्थिति खराब चल रही है ना, मान लीजिए उनके किसी फ्रेंड को किसी रिलेटिव को बीमार है तड़प रहा है ना, तो उसको जाके बताते हैं देही नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना, कि आप ये शरीर नहीं हो, है ना, इस दर्द से ऊपर उठो, इतना हार्ड हार्टेड भी नहीं होता भक्त, है ना। पर कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भक्तों ने भी कई जगह शोक किया है, भक्तों ने भी कई जगह क्रोध प्रकट किया है, भक्तों ने भी कई जगह ये प्रकट किया है कि रिवेंज की भावना, बदला लेना, है ना, कई जगह ऐसा प्रतीत होता है कि जो भक्त लोग हैं वो बॉडी लेवल पे ही कार्य कर रहे हैं, जैसे ध्रुव महाराज की कथा में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज जब जंगल से वापस आ गए थे तपस्या करके, और उनके पिता ने देखा तो तानपाद ने कि ही इज क्वालिफाइड, ये योग्य है राजा बनने के, उनको राजा बना दिया गया। और उनके जो भ्राता थे, भाई थे, एक बार युद्ध के लिए जाते हैं और उनके भाई का वध किया कर दिया था उत्तम का। अब जब उत्तम का वध हो जाता है तो ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आता है और ध्रुव महाराज बदले की भावना से जाते हैं कि मुझे इन यक्षों को मार देना है। और ऐसा नहीं बदले की भावना से जाते तो कोई बात नहीं प्लानिंग करता हूं, सेना को इकट्ठा करता हूं, नहीं, जैसे ही उनको पता लगा उत्तम को मार दिया गया यक्षों के द्वारा, अकेले निकल जाते हैं। बताया जाता है कि अपने रथ को भी स्वयं खुद चला रहे होते हैं, खुद ही अपने रथ को चला रहे होते हैं और वहां पर जाके क्या करते हैं, शंख बजा देते हैं। अगर नॉर्मली हम अपने आसपास कहीं शंख सुनेंगे तो हमें लगेगा कौन भक्त डिस्टर्ब कर रहा है, पर ये लोग यक्ष थे, है ना, ये वॉरियर्स है, फाइटर्स थे, इनको शंख का मतलब पता है, शंख का मतलब क्या है, युद्ध। तो सारे यक्ष आ गए युद्ध के लिए, है ना, 130,000 योद्धा थे और हर कोई एवरी मिनट 10 बाण छोड़ रहा था, हर मिनट। तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा एक काले रंग का बादल हो जिसने ध्रुव महाराज को ढक लिया है। ध्रुव महाराज उन बाणों के बीच में नजर भी नहीं आ रहे थे। तो अब इस कथा से तो ऐसा लगता है कि ध्रुव महाराज ये तो भक्त है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांक्षती। अगर भाई मर गया तो सोचना तो ये शरीर है नहीं, ये कौन है, आत्मा है, तो ये तो मरा ही नहीं है, शरीर तो मृत था, फिर किसने कर रही है। तो श्री प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि जो भक्त है वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ डिवोशनल सर्विस नहीं छोड़ता, अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो गया तो कामचोर बन गया, ऐसा नहीं है। एक बार एक प्रोफेसर ने श्री प्रभुपाद से पूछा व्हाई अर्जुन वाज एंग्री ऑन जयद्रथ, जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध किया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जयद्रथ को अगले दिन का सूर्यास्त होने से पहले क्या करूंगा, मार दूंगा, और नहीं मार पाया तो क्या करूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद व्हाई अर्जुन वाज एंग्री, अर्जुन जो थे इतने क्रोधित क्यों थे, भाई बेटा मर गया क्या हो गया, इतना तो आपको, इतने बड़े भक्त हो, इतने अच्छे भक्त हो, पता होना चाहिए आपको कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, है ना। इतना तो नए बच्चे को सिखाया जाता है, वो पहला जो 4-day सेशन किया था उसमें बताया था हू एम आई, पता नहीं अर्जुन के समय सेशन होते थे नहीं होते थे, पर इतना बेसिक हर भक्त को ये पता होता है हू एम आई, है ना, मैं कौन हूं, सामने वाला व्यक्ति कौन है, है ना। तो अर्जुन इतने क्रोधित क्यों थे, श्री प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया कि कोई भी किसी का क्लोज वन, किसी का संबंधी पास अगर निकटी संबंधी अगर मरता है तो ये नेचुरल बात है कि व्यक्ति लेमेंट करता है, दुख करता है। सोल आत्मा तो एटर्नल है, पर व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है ना, वो जो भक्त है उस व्यक्ति को मिस करता है। कोई मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति अगर रोता है तो उस शरीर के लिए रोता है कि वो शरीर चलेगा, पर एक भक्त अगर रोता है कभी तो इसलिए रोता है कि उस भक्त का संग चलेगा। तो श्री प्रभुपाद ने बताया कि बट द फैक्ट इज ही डिड नॉट गिव अप हिज सर्विस, अर्जुन ने अपनी सेवा को नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं था कि अर्जुन को पता लगा अभिमन्यु मर गया है तो जो अर्जुन थे डिप्रेशन में चले गए, है ना, डिप्रेशन में चले गए और सारी सेवा छोड़ दी, है ना। आपने बोला था मां मनुस्मरण युद्ध च, ये लो युद्ध च, मेरा बेटा मर गया आपके युद्ध च के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने अपनी फाइट कंटिन्यू की। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि इसलिए ही धीरा, इसीलिए ही वो धीर पुरुष। श्री प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि कृष्णा पर्सनली इंसाइटेड एंगर इन अर्जुना, श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण ने खुद अर्जुन के अंदर क्रोध को डाला था, अदरवाइज बिना क्रोध की कोई व्यक्ति कैसे लड़ सकता है। आज मैं बहुत खुश हूं चलो लड़ने चलता हूं, मतलब ऐसे कोई कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता, मतलब ना बहुत खुश रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, चलो लड़ लेते हैं किसी से, ऐसा कुछ होता नहीं है। कृष्ण पर्सनली इंसाइटेड, भगवान ने एंगर क्रोध को डाला अर्जुन के अंदर, हमारी तरह नहीं था, है ना। हमारे यहां तो क्या होता है, अगर कोई जन्म लेता है तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, भगवान की सेवा बंद करते हैं, जी सूतक लग गया, है ना, अब भगवान को कभी भोग नहीं लगेगा, अब भगवान की आरती नहीं होगी, अब भगवान को कुछ नहीं होगा। और कोई मर गया तो फिर लग गया, है ना, अब भी भगवान को भोग नहीं लगेगा, अब भी भगवान की आरती नहीं होगी, जैसे सारी गलती इन्हीं की है, पूरा टॉर्चर करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान की सेवा बंद करते हैं, बाकी चीजों से पहले निपटूंगा, पहले ये टेंशन खत्म करो, और खुद डोमिनोज से पिज्जा मंगवा के खा रहे होते हैं, है ना, और भगवान का भोग लगाना, आरती, सब कुछ बंद करते हैं। सबसे पहली चीज बंद होती है हमारे खुशी में और शोक में भगवान की सेवा, सेवा को बिल्कुल बंद करते हैं। पहले ये शटर बंद करो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री प्रभुपाद, इन लोगों ने अपने लाइफ में प्रीचिंग करने के लिए कितने चैलेंजेस फेस किए। इनके समय पे बुक्स अवेलेबल नहीं थी, हमें तो पढ़ने के लिए किताबें मिल जाती है पर पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, टाइम है पर हम निकालते नहीं है, कोई बुक्स अवेलेबल नहीं थी, है ना, और प्रचार करना था, डायरेक्ट फाइट थी बाबा जी के अगेंस्ट, मायावादी के अगेंस्ट, है ना, जो देश है उसका गुलाम था, है ना? प्रचार करने के लिए जहां जाना पड़ा वो फॉरेन लैंड है, अपनी जगह नहीं है वो, ऐसी सिचुएशंस थी, पर फिर भी कभी इन्होंने अपनी सेवा क्विट नहीं की, ये विचार नहीं लाया कि जब कुछ हो ही नहीं पा रहा तो मैं करूं क्यों, ना? जब कुछ हो ही नहीं पा रहा मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, ना? इतने समय से प्रयास कर रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं, लेट्स ड्रॉप इट, क्योंकि ये जो भक्त है, भक्त हैं, ये क्या देखते हैं, दे कैन सी हिडन ब्लेसिंग्स इन ऑल सिचुएशंस। भगवान हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन क्यों नहीं लाते, चाहे वो खुशी की स्थिति हो, चाहे वो दुख की स्थिति क्यों ना हो, चाहे हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, सिचुएशंस फेवरेबल हो, चाहे हमारा शरीर स्वस्थ ना हो, सिचुएशंस ठीक ना हो, ये लोग क्या, ये जो भक्त हैं या जो भी भक्त हैं वो क्या करते हैं, हिडन ब्लेसिंग्स देखते हैं हर सिचुएशन में, है ना, छुपी हुई कृपा देखते हैं भगवान की, कि भगवान इससे मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, व्हाट कृष्णा वांट्स टू टीच मी, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, मैं क्या सीखूं इससे, क्या पाठ लूं मैं इससे, क्या लेसन लूं मैं इससे। श्री प्रभुपाद की फैक्ट्री में जब आग लग गई थी, है ना, तो श्री प्रभुपाद ऐसे नहीं कि दुखी हो गए थे, है ना, कि एक ही तो सहारा था मेरा, है ना, इसी से तो मैं अपना घर चलाता था, नहीं, श्री प्रभुपाद ने एक ही श्लोक बोला, यस्य अहम् अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनं शनैः। जब पांडवों के जीवन में ऐसी स्थिति आई, परिस्थिति आई कि उनको जंगल में जाना पड़ा, पांडव ऐसे नहीं कि दुखी हो गए, पांडवों ने भगवान से पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों, किस कारण से ऐसा हुआ है, तो भगवान ने पांडवों को बताया कि जिसमें मैं अपनी असीम कृपा करता हूं, सबसे विशेष कृपा करता हूं, उनका धन छीन लेता हूं, क्यों, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भक्त क्या करता है, होल हार्टेडली पूरे हृदय के साथ मेरी सेवा में जुड़ता है, नहीं तो भक्त क्या पूरे हृदय से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि क्या रहता है उसको, सहारा रहता है किसी चीज का, कोई बात नहीं, भक्ति तो कर रहा हूं, मान लो कभी भक्ति नहीं कर पाया, भक्ति से फेल हो गया, मेरा धन तो है, मेरी प्रॉपर्टी तो है, मेरे फॉलोअर्स तो हैं, ये लोग तो सब हैं मेरे साथ, ये मेरी रक्षा तो करेंगे, तो भगवान का सोचते हैं कि ये व्यक्ति के पास जब तक ये चीजें रहेगी पूरी तरीके से कभी मुझ पर आश्रित नहीं होगा, तो भगवान क्या कहते हैं उसे, उस कृपा को ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं उस कृपा, भगवान नहीं दी थी, भगवान ही उस कृपा को विड्रॉ कर लेते हैं, उस कृपा को ले लेते हैं, और अब उस भक्त के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सारी ऑप्शंस उस भक्त की क्लोज हो जाती है, अब उसको केवल एक ही चीज करनी होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल भगवान के नाम का जप करना और भगवान के नाम का प्रचार करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हिडन ब्लेसिंग्स देखनी पड़ेगी भगवान की, किस प्रकार से ब्लेसिंग्स आ रही है हमारे जीवन में। अभी तो हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी स्थिति आती है, सबसे पहली चीज हम करते हैं, वी ब्लेम कृष्णा, वी ब्लेम डिवोटीज, हम भक्त को ब्लेम करते हैं, कृष्ण को ब्लेम करते हैं कि इन लोगों की वजह से ये मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 13वें अध्याय में विदुर महाराज का चरित्र आता है। जस्ट इमेजिन करके देखिए, विदुर महाराज ने अपने जीवन में हमेशा धृतराष्ट्र का भला चाहा, हमेशा अच्छी और नेक सलाह दी कि किस प्रकार से हमेशा उन्होंने ये विचार बनाया अपने विदुर ने कि किस प्रकार से मैं धृतराष्ट्र की दुर्योधन की कौरवों की मदद कर सकूं, ये गलत ट्रैक पर ना जाए, गलत जगह पर ना जाए, गलत रास्ते पर ना जाए, पर किसी ने भी उनको समझा नहीं, किसने भी किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी कभी, और इसके बाद क्या किया, विदुर को निकाल दिया, और कैसे निकाला विदुर को, ये मतलब दुर्योधन ने हार्श वर्ड्स, है ना, इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किए विदुर के प्रति, और उनको वहां से निकाला, ब्लास्फेम किया, धक्के मार के निकाला, है ना, विदुर वॉज वायलेंटली ट्रीटेड, ना गंदी तरीके से उनके उनके साथ व्यवहार किया गया, और स्वयं उनके भ्राता ने, भाई ने जिनके लिए वो सब कुछ कर रहे थे उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, इंटरवीन नहीं किया बीच में कि नहीं नहीं बिल्कुल तुम रुक जाओ कोई बात नहीं मैं समझाता हूं दुर्योधन को, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया बीच में। अगर ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ होगी है ना, मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं है ना, भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है, कई प्रॉब्लम्स आते हैं, कई दुख आते हैं, कई कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, हम लोग क्या करते हैं उन कष्ट को याद करके रोते रहते हैं, हमेशा हमेशा रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, काश ऐसे ना हुआ होता, काश ऐसे ना हुआ होता है ना, हम हमेशा रोते रहते हैं। पर विदुर क्या थे, विदुर बहुत खुश थे, उस स्थिति में उन्होंने रोना शुरू नहीं किया, विलाप नहीं किया उन्होंने स्थिति में कि देखो मेरे साथ क्या हो गया है ना, मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया और रेसिप्रोकेशन में इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, रोना नहीं शुरू किया उन्होंने। विदुर ने अंडरस्टैंड, विदुर ने यह समझा कि विदुर ने भगवान की हिडन ब्लेसिंग्स को समझा कि इसमें भगवान की बहुत विशेष कृपा है। नाउ आई एम फ्री फ्रॉम ऑल पॉलिटिक्स ऑफ दुर्योधन, अब दुर्योधन की जितनी भी पॉलिटिक्स थी उसमें मुक्त हो गया। जब तक दुर्योधन के साथ रहता कभी भी मैं ठीक से भक्ति नहीं कर सकता था, अब क्या है मैं आराम से भक्ति कर सकता हूं, अब मेरे सर पे ये प्रेशर नहीं है, मेरे सर पे टेंशन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, हिडन ब्लेसिंग्स को देखा और फाइनली जो भी विदुर ने बोला था, धृतराष्ट्र को समझाया था कि किस प्रकार से उनके 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे, जितने योद्धा है सब मारे जाएंगे, जितनी स्त्रियां हैं विधवा हो जाएंगी है ना, वो सभी हुआ। और जब विदुर परिक्रमा जब तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, सारी सूचनाएं मिल रही थी कि आप कौन मरा, आप कौन मरा, आप कौन मरा, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ रही थी। और जब उनको पता लगा कि सब मर चुके हैं, सब कौरव मर चुके हैं, उसके बाद विदुर ने यह नहीं सोचा कि चलो अब चलता हूं वापस है ना, अब चलते हैं हस्तिनापुर वापस और क्या करूंगा, प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करूंगा, अब चल के प्रॉपर्टी, अब तो सब मारे जा चुके हैं ना, अब तो प्रॉपर्ट, अब तो मैं अधिकार से मान सकता हूं, मेरा भी तो हिस्सा है प्रॉपर्टी में, दुर्योधन ही तो था रोकने वाला, चले गए आप वो ना? अब प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करता हूं या बदला लेता हूं है ना, या फिर मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना धृतराष्ट्र ने, कुछ नहीं बोला था, चलो मैं भी इसका मजाक उड़ाता हूं, नहीं ऐसी कोई भावना नहीं थी उनकी। विदुर की क्या भावना थी, विदुर की यही भावना थी कि सब तो मारे जा चुके हैं, सब कुछ नष्ट हो चुका है, पर फिर भी कम से कम अपने भाई का जीवन तो बचा लूं, कम से कम अपने भाई का जीवन तो बचा लूं। और विदुर पहुंचे वहां पर और उन्होंने अपने भाई को समझाया, पूरी इंस्ट्रक्शंस दी है ना, श्रीमद् भागवतम की पहले स्कंद के 13वें अध्याय में पूरा बताते हैं कि किस प्रकार से विदुर अपने भ्राता को समझा रही है, धृतराष्ट्र को समझा रही है। तो देखिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कालो अस्मि ना, टाइम जो है भगवान की एनर्जी है, तो अगर हम भगवान कुछ भी भगवान को डायरेक्टली नहीं देते, कुछ भी भगवान को डायरेक्टली अर्पित नहीं करते, तो अल्टीमेटली भगवान समय के प्रभाव के समय के कारण सब कुछ भगवान नहीं लेते हैं, सब कुछ हमारे से छीन जाता है। अगर हम अपनी मर्जी से भगवान को सब कुछ समर्पित कर देंगे तो ये भक्ति कहलाएगी, अदरवाइज टाइम के अकॉर्डिंगली तो ये सारी चीजें ऐसे बता रहे हैं इस तात्पर्य प्रॉपर, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, काल के प्रभाव के कारण हम क्या देखते हैं, ये सारी चीजें अपने आप ही खत्म होती चले जाती है। श्री प्रभुपाद पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में बता रहे हैं, अनुवाद बता रहे हैं, जो भी परम काल के प्रभाव में रहता है उसे अपना सर्वोपरि प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। रिपीट करो, दोबारा सुनिए, जो भी परम काल के प्रभाव में रहता है उसे अपना सर्वोपरि प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है, अन्य वस्तुओं का वस्तुएं यथा धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपना जीवन भगवान को अर्पित करना पड़ेगा ही पड़ेगा, काल को अर्पित करना पड़ेगा ही, और साथ में क्या क्या देना पड़ेगा, अपना धन सम्मान संतान भूमि घर सब कुछ देना पड़ेगा ही, अल्टीमेटली काल को देना पड़ेगा। सो बेटर क्या है कि हम भगवान की सेवा में इन सब चीजों को लगाएं, क्योंकि एक दिन तो ये छिनना ही है। तात्पर्य में प्रॉपर बता रहे हैं एक साइंटिस्ट के बारे में, एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजना बनाने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था तो सहसा अजय काल का बुलावा आ गया, उसकी मृत्यु आ गई, अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन पत्नी, बच्चे, घर, धरती, धन आदि सब कुछ त्यागना पड़ा, सब कुछ त्यागना पड़ा, सब कुछ उसको छोड़ना पड़ा था। आगे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, भारत में राजनैतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी को समर्पित कर देना पड़ा। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो सारे काल के प्रभाव के कारण है। तो जब भारत और हिंदुस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो जितने लोग भी वहां पर रहते थे उनको अपना सब कुछ देना पड़ा था। वो ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी प्रॉपर्टी संभाल लूं, उनको अपना जीवन देना पड़ा, सम्मान देना पड़ा, प्रॉपर्टी देनी पड़ी, सब कुछ देना पड़ा। आजकल हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से है ना, आजकल आप कोई भी न्यूज खोलिए, अगर आप आजकल कोई भी व्हाट्सएप खोलिए, आप कुछ भी खोलिए, आपको सिर्फ यही मिलेगा कि कौन से देश आपस में क्या क्या लड़ाई कर रहे हैं, क्या क्या मिल रही है ना। इवन डिवोटीज आजकल डिवोशनल ग्रुप्स में भी ऐसे इंफॉर्मेशन भेजने लग गए हैं कि क्या क्या चल रहा है ना। और उसके बावजूद भी देखिए हम लोग कितनी प्लानिंग्स बना रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी है ना, कि मैं किस प्रकार से ऐसा कार्य करूंगा कि मैं सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बनूंगा, सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति बनूंगा, सबसे ज्यादा धन अर्जित करूंगा है ना। हमें नहीं पता कब तक ये रहेंगे नहीं रहेंगे है ना, कब युद्ध छिड़ जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, वी डोंट नो, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है ना। फिर भी हमारी प्लानिंग्स क्या है, हमारी प्लानिंग्स कभी खत्म नहीं होती। हम एक योजना के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी योजनाएं बनाए जा रहे हैं यहां पर सेटल होने के लिए। पर काल के प्रभाव से क्या बताया जा रहा है, काल के प्रभाव के कारण बताया जा रहा है कि सब कुछ छीन लिया जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। और श्री प्रभुपाद इसी तात्पर्य में आगे बता रहे हैं, अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। हम देखते हैं कई सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स बनते हैं ना, कई कविताएं बनती है ना पुराने दिनों को है ना, किसी प्रेमिका, प्रेमिका प्रेमी की प्रेमिका छूट जाए, या प्रेमिका का प्रेमी छूट जाए है ना, या उसका यौवन खत्म हो जाए, वो बूढ़ा हो गया है ना, जाने कहां गए वो दिन। लोग कितने कितने गाने लिख रहे हैं इसके पास, कितनी कितनी कविताएं लिखी जा रही हैं कि वो पुराने दिन कहां चले गए ना, कहां गए वो दिन है ना। तो काल के अनुसार ये सब चीजें छीनी जा रही हैं, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे विचार नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेटल्ड है, हमें लगता है कि सबके साथ तो हो रहा है पर मेरे साथ नहीं होगा। सो दिस इज द पावर ऑफ टाइम, ये समय की शक्ति है। नथिंग इज स्टेडी, नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी स्टेडी, कुछ भी स्टेबल नहीं है यहां पर है ना। अगर हम इस परिस्थिति में कभी स्टेडी और स्टेबल होने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल ही गिरेंगे, क्योंकि स्टेडी नहीं रह सकते हम लोग इसमें। हमें एक भक्त को योजना बनानी पड़ेगी, अज्ञानता में नहीं रह सकता भक्त, एक भक्त को योजना बनानी पड़ेगी कि मेरी कितनी आयु हो चुकी है और मेरी कितनी आयु बची होगी, तो मैं अभी तक क्या कर रहा हूं ना। एक बार गुरुजन अपने लेक्चर में बता रहे थे कि एक भक्त को रोज सुबह उठकर ये सोचना चाहिए कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, रोज सुबह उठकर ये सोचना चाहिए कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। तो जब आपके जीवन का आखिरी दिन होगा तो क्या क्या करोगे उसमें, क्या उस समय ये सोचोगे कि किस किसने आपके साथ बुरा किया, क्या उस समय ये सोचोगे कि आप जीवन में क्या क्या तकलीफ चल रही है, क्या ये सोचोगे 15 साल पहले मेरे साथ ये घटा था है ना, या मेरी प्रॉपर्टी उसने छीन ली। नहीं, जब आपको पता होगा कि ये आपका आखिरी दिन है, यू विल गिव योर बेस्ट, बिकम कृष्ण कॉन्शियस नाउ, अभी इस परिस्थिति में अभी कृष्ण भावना भावित बने। अगर कल के लिए टालेंगे तो कल कभी आता नहीं है, अभी कृष्ण भावना करना पड़ेगा है ना। रोज सुबह ये विचार करना पड़ेगा कि आज ये मेरा, पहले तो भगवान को धन्यवाद करना पड़ेगा एक और दिन के लिए, और फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये आज मेरा, टुडे इज माय लास्ट डे, एंड देन वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि अगर आज मेरा आखिरी दिन है मैं क्या क्या करूंगा, कितना कृष्ण भावना भावित होगा। क्या मैं सोचूंगा कि आज बहुत खा लेता हूं, क्या मैं सोचूंगा कि आज मैं बहुत सो लेता हूं है ना, क्या मैं सोचूंगा कि चलो बैठ के आज मैं कुछ भी बातें कर लेता हूं। नहीं, अभी तो हम ये जो वैल्यूएबल ह्यूमन फॉर्म मिला है ना, इस पूरे टाइम को हम वेस्ट कर रहे हैं बातों में, प्रजल्पा में। प्रजल्पा भी कैसी, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजल्पा, भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की प्रजल्पा, हर तरीके से हमने अपने आप को एब्जॉर्ब रखा हुआ इसमें। पर अगर हमें पता होगा ये आखिरी दिन है, देखिए हम धृतराष्ट्र की चर्चा तो करते हैं ना, धृतराष्ट्र अंधा था फिजिकली और स्पिरिचुअली, पर अगर हम अपने लिए देखें, वी आर ऑल्सो ब्लाइंड, हम भी अंधे हैं, वी आर ऑल्सो ब्लाइंड, हम भी अंधे हैं, वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, हम देख रहे हैं हमारे सामने क्या क्या घटित हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, जिन जिन लोगों ने धन कमाया, जिन जो जो लोग बड़े बने, धनवान बने, यशवान बने, जिनका बहुत ख्याति फैली, कहां गए वो सब लोग, कहां हैं वो सब लोग, उसके बाद भी हम लोग क्या है, वी आर ब्लाइंड, हमें अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, अंधों की तरह जी रहे हैं हम लोग, फिर भी इतनी योजनाएं बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि कल शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूंगा, बहुत बड़ा मनुष्य बनूंगा, है ना, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध के पहले अध्याय में कलयुग में जितने राजा आए हैं उनका वर्णन किया गया है, बताया गया है कि राजा कितने कितने साल तक रहे, क्या क्या उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए और मर गए। फिर उसके बाद अगला राजा आया, उनका पूरा परिवार आया, 300 साल तक उन्होंने राजा किया, वो भी चले गए। फिर उसके बाद अगले राज्य आए, 1000 साल तक उन्होंने राज्य संभाला, वो भी चले गए। उसके बाद पूरा पढ़ते हैं हम ये चीजें, पूरा समझते हैं हम ये चीजें, पर कुछ समझ नहीं आता। शमशान वैराग्य, शमशान घाट में जिस प्रकार से जाते हैं, एक अपने आप ही वैराग्य जाग जाता है अंदर से, एक वैराग्य जाग जाता है अंदर से कि जीवन में रखा ही क्या, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्या रखा है जीवन में, छोटी सी तो आयु है, देखो उसकी शक्ल को देखो, है ना, लग ही नहीं रहा है मरा हुआ है, रोते हैं उस समय, है ना, बस गेट से बाहर निकलते ही दोबारा समय शुरू हो जाता है, शमशान वैराग्य। एक बार एक स्वर्गपति को एक बार अपने प्रवचन में सुनाया था एक कथा, कि एक व्यक्ति, उसके बच्चों ने उसको बहुत कोशिश की, है ना, मतलब वो बच्चे भक्त थे, वो चाहते थे पिताजी भक्त बन जाए, पिताजी भक्त बनते नहीं थे, पिताजी बड़े कठोर स्वभाव के थे, ना? बच्चा हर भक्तों के पास गया, सबसे रिक्वेस्ट की, प्लीज 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 मेरे पिताजी को भक्त बना दो, ना? हर भक्त कोशिश करता था फेल हो जाता था, हर भक्त कोशिश करता था फेल हो जाता था, ना? एक भक्त ने बोला चलो अपने पिताजी को मेरे साथ भेज दो, मैं इनको संभालूंगा, मैं इनको लेके जाऊंगा अपने साथ तीर्थ भ्रमण पर। वो साधु उनको भक्त को उनके पिताजी को अपने साथ तीर्थ भ्रमण पर ले गया। अब तीर्थ भ्रमण पर हर जगह लेके गया, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा का, हर जगह लेके गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसको, कोई वैराग्य नहीं, कुछ नहीं। एक बार तीर्थ भ्रमण करते करते वो काशी पहुंचे और उसके पिता ने देखा कि कई चिताएं जल रही हैं, कई लोग मर चुके हैं, कई चिताएं जल रही हैं, और वो कांपने लगा, उनके पिताजी जो थे वो कांपने लगे और रोने लगे, है ना, जैसे जैसे उनके पिताजी कांपे जा रहे थे, रोए जा रहे थे कि भक्त खुश हुआ जा रहा था, है ना, जाग गया वैराग्य, ना, आखिर अब मैंने कुछ करके दिखाया, अब इसने भक्ति के लक्षण को चाहे, अब ये वैराग्य दिखाएगा, अब ये बोलेगा कि संसार में कुछ नहीं रखा प्रभु जी, है ना, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, ना, और ये व्यक्ति रोए जा रहा है, ये भक्त उसने क्या हुआ बोलो तो सही, ये सुनना चाहता था, बोलो तो सही, प्लीज बताओ हुआ क्या, क्यों रोया जा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है, ना? इस भक्त ने रोते रोते बोलना, इस उनके पिताजी ने रोते रोते बोलना शुरू किया, मैंने अपना पूरा जीवन वेस्ट कर दिया। ये भक्त और खुश, है ना, ये तो कितना अच्छा लक्षण है, पूरा जीवन वेस्ट कर दिया, है ना, ये तो क्या वैराग्य जा रहा है, ना? पूरा जीवन मैंने अपना वेस्ट कर दिया, पूरा जीवन कैसे वेस्ट कर दिया बताओ तो सही, कैसे वेस्ट कर दिया, पूरा जीवन मैंने कपड़े का बिजनेस किया, लकड़ी का करता तो कितना अच्छा होता, कितना कमाता मैं, है ना, कितनी आमदनी होती, है ना। हमारा वैराग्य इसी प्रकार से होता, हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें घट रही हैं हमारे आसपास, हम सब देखते हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, पर फर्क कुछ नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर ब्लाइंड, अंधे हैं हम लोग। और एक अंधे व्यक्ति को कौन चाहिए, एक विदुर चाहिए, एक भक्त चाहिए जो उसको समझाए कि मूर्ख गलत कर रहा है। इसी में 3 श्लोक बाद विदुर जी जो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, वो बोलते हुए भी डर लगता है ना। विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह उनके टुकड़ों पर पल रहे हो, निकलो यहां से बाहर। तो हम लोग भी क्या है, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं ना? हम लोग सोच रहे हैं कि जो समय है ना, ये समय है, इस समय को हम किसी तरीके से, इस समय को हम लोग, है ना, हम समय को मारने की कोशिश करते हैं, टाइम को किल करने की कोशिश करते हैं, पर हम टाइम को किल नहीं कर रहे, ये टाइम हमें किल कर रहा होता है, ये समय हमें मार रहा होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए, जैसे कोई एक पक्षी, एक पक्षी जब किसी जंगली जानवर को देखता है उसकी तरफ भागता हुआ उसको खाने के लिए, उसको मारने के लिए, है ना, ये पक्षी इतना डर जाता है क्या करता है, मिट्टी में सर छुपा लेता है, अपने सर को मिट्टी में डाल देता है, क्योंकि वो पक्षी वो उस जानवर को नहीं देख पा रहा तो उसको लगता है वो जानवर चले गया। तो हम भी टाइम को देखकर ऐसे कर रहे हैं, है ना, आंखें ढक रहे हैं अपनी, आंखें बंद कर रहे हैं अपनी, है ना, भाग रहे हैं हम इससे, है ना, आप नहीं देख पा रहे पर वो समय आपको देख रहा है ना, टाइम इज किलिंग, समय जो है मार रहा है, धीरे 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 करके हमारी आयु बढ़ती जा रही है ना, 30, 40, 45, 50, 55, है ना, कभी भी नोटिस आ जाएगा छोड़ने का शरीर, है ना, वैसे नोटिस मिलता नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना, पूरा हम पूरा अपना टाइम किसमें व्यतीत कर देते हैं, सुखी होने में, दुख में, कुछ अच्छा हो जाए तो इतना खुश हो जाते हैं कि भूल जाते हैं भक्ति करनी है, कुछ बुरा हो जाए जीवन में इतना दुखी हो जाते हैं भूल जाते हैं भक्ति करनी है। उसी प्रकार से जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा कभी कभी स्कूल में बहुत अच्छा एग्जाम होता है, गया होता उसका, जो जो नालायक था जो जो पढ़ा वही आ गया, इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है अगले पेपर की पढ़ाई नहीं करता, उसको लगता है इसमें भी वही होगा, फिर क्या होता है अगले पेपर में फेल हो जाता है, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इतने नालायक होते हैं, कुछ पढ़ाई करके नहीं गए, पेपर खराब चले गया, या पढ़ने वाले भी थे ना, किस्मत इतनी फूटी हुई थी कि जो जो पढ़ा था वो नहीं आया, उसके अलावा सब कुछ आ गया, इतना दुखी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, अगले पेपर की पढ़ाई नहीं कर पाते, दोनों ही सिचुएशन उनके लिए नुकसानदायक थी, है ना। जैसे एक क्रिकेटर, है ना, मान लो एक क्रिकेटर एक बॉल को फेस कर रहा हो, उस बॉल को फेस करते हुए मान लीजिए एक बॉल को फेस नहीं कर पाया, मिस हो गई वो बॉल, अगर आप उसको लेकर शोक करता रहे तो अगली बॉल पर थोड़ी फोकस कर पाएगा, आउट हो जाएगा अगली बॉल पर अगर फोकस नहीं करेगा, एक बॉल मिस हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ड्रॉप कर दे उस आइडिया को, है ना, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं, अब अगली बॉल आ रही है उसको फेस करो, अगली अपॉर्चुनिटी अगला मौका है आपके पास, उसको फेस करो, अब उसको जाने मत दो। और अगर मान लीजिए कुछ अच्छी शॉट मार दी और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तब भी फोकस नहीं कर पाएगा, उसको फोकस रखना पड़ेगा, अपना मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो टाइम को व्यक्ति जनरली इन दोनों ही चीजों में किल कर रहा होता है, दोनों ही चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, चाहे जीवन में कुछ अच्छा व्यतीत हो जाए या कुछ बुरा घटित हो जाए उस व्यक्ति के साथ। सो प्रैक्टिकली एक भक्त को अपने जीवन में चाहिए कि अपने पूरे समय को, है ना, रोज यही सोचे कि मेरे जीवन का आज आखिरी दिन है, और अपने पूरे जीवन को व्यतीत ना करे प्रजल्पा करने में, अपने दिन को व्यतीत करे कि कैसे आज का मैं अपना डे पूरा कृष्ण कॉन्शियस बताऊंगा, है ना। प्रजल्पा को कल के लिए छोड़ दीजिए, अभी हम भक्ति को कल के लिए छोड़ते हैं, प्रजल्पा आज करते हैं, उल्टा कर दीजिए, भक्ति को आज कीजिए और प्रजल्पा कल के लिए छोड़ दीजिए, और जब कल का दिन आएगा तो फिर उस दिन भक्ति कीजिए और प्रजल्पा को अगले दिन के लिए ड्रॉप कर दीजिए। पर प्रजल्पा पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, दुनिया भर की बुक, है ना, भक्तों फोन करते हैं, फोन करके बोलते हैं और मुझे बताइए सुनाइए मंदिर में क्या हो रहा है, तुम्हारे क्या करना है भाई मंदिर में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपकी भक्ति कैसे चल रही है वो सोचो, मंदिर में क्या हो रहा है ना, किस भक्त के साथ क्या घट रहा है, कौन भक्ति में आगे बढ़ रहा है, कौन भक्ति में नीचे जा रहा है, सारी खबरें हमारे को चाहिए होती हैं, पर अपनी भक्ति कैसे चल रही है उसको कुछ पता नहीं होता, वो बिल्कुल ड्रॉप जा रही होती है, उस पर हम आउट पे आउट हो रहे होते हैं, उसका हमारे को कुछ पता नहीं हो रहा होता। और फिर सबसे बड़ी हमारे लिए सबसे बड़ा जो मित्र है आजकल हमारा स्मार्टफोन, है ना, इस स्मार्टफोन ने हमारे को सबसे ज्यादा बेवकूफ बना दिया है ना? एक भक्त का फोन खो गया था, वो मंदिर में आए थे, है ना, मैंने बोला बताओ नंबर, मैं आपको कॉल करता हूं, देखो रिंग जा रही जा रही, उनको अपना नंबर याद नहीं है, इतने स्मार्टफोन के कारण लोग इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अपना नंबर ढूंढे कैसे बताओ फोन को, एक आखिरी होप थी वो भी नहीं है कि कॉल तो कर सकता व्यक्ति, वो भी नहीं बचे, जान दो जो स्मार्टफोन के कारण इडियट्स है सब, पूरा समय उसमें व्यतीत करना पड़ता है स्मार्टफोन पर। पहले जमाने में जो लोग भूखे रहा करते थे, रात को सोते नहीं थे, है ना, पूरा जीवन अपना व्यतीत करते थे, है ना, इधर उधर समय वेस्ट नहीं करते थे, है ना, फोकस रहते थे, उनको ऋषि कहा जाता था, महाऋषि कहा जाता था। आजकल लोग जो खाते नहीं है, सोते नहीं है, रात भर जागते हैं, उनको ऑनलाइन कहा जाता है। पहले इन लोगों को ऋषि कहा जाता था, अब उनको ऑनलाइन कहा जाता है। पूरा समय ना ना, दिन हो या रात हो, कोई भी, चाणक्य पंडित क्या कह रहे हैं, आयुषः क्षण एकोपि न लभ्या स्वर्ण कोटि भी, है ना, करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्राएं देकर भी एक मोमेंट को हम वापस नहीं ला सकते, जो मोमेंट चले गया है उसको वापस नहीं ला सकते हम लोग। तो हमारा जो भी डे है वो कैलकुलेटिव होना चाहिए, अपने डे को हम ऐसे थोड़ी खुला छोड़ देंगे। एक बिजनेसमैन अपने डे को कैलकुलेट करके चलता है ना। इस वजह से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा अपने प्रवचन में बताते हैं कि एक भक्त को एक व्यापारी की तरह होना चाहिए, एक बिजनेसमैन की तरह अपने डे को कैलकुलेट करे, आज का मेरा दिन, आज के पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या एक्ट करने हैं पूरे दिन में, फिर वैसे ही प्लानिंग बना के वैसे कार्य करे ना, तब वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर उसने कुछ प्लानिंग ही नहीं की दिन की और पूरा दिन उसका प्रजल्पा या फालतू की बातों में निकल गया, इसमें न्यू क्या था, क्या बहुत बड़ा बात थी, इसमें कुछ न्यू नहीं था इसमें। तो दरअसल श्री प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में इसके बता रहे हैं श्री प्रभुपाद इसमें कि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग हैपेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, समय के कारण सब कुछ घटित हो रहा है, और जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं वो क्या, दे आर नेवर जुबिलेंट और मोरोस बिकॉज ऑफ नेचर एक्टिविटी, वो बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल, जो भी सर्कमस्टेंशियल चेंजेस है ना, जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें परेशान नहीं होते। किस कारण से परेशान नहीं होते, बिकॉज ही हैज फुल फेथ इन ऑल सर्कमस्टेंसेज दैट कृष्ण विल प्रोटेक्ट मी, क्योंकि उनका पूरा विश्वास होता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में, और इस कारण से श्री प्रभुपाद बता रहे हैं देयरफॉर अ डिवोटी नेवर डेविएट्स फ्रॉम हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसलिए जो भक्त है, जो भी उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है डिवोशनल सर्विस की, उससे कभी च्युत नहीं होता, कभी हटता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं कि अपनी सेवा छोड़ देता है। मान लो लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई, इसका मतलब यह नहीं कि अपनी सेवा को छोड़ दे, सर्विस, भक्त अपनी सेवा को कंटिन्यू रखता है। पर जिस व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं या कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, वो व्यक्ति हर परिस्थिति में क्या करता है, अपनी सेवा को छोड़ देता है। इसलिए राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में कि जिस भगवान ने माता के गर्भ में हमारी रक्षा की है, वो गर्भ से निकलने के बाद रक्षा क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे रक्षा, रक्षा करेंगे निश्चित रूप से। महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि भगवान रामचंद्र जब वनवास में जा रहे थे तो भगवान राम के चरणों में पूरे कांटे चुभ गए थे, है ना, और सीता माता जब चरण दबाते हुए भगवान राम के कांटे निकालने लगी, भगवान ने रोक दिया, नहीं, भगवान ने रोका किस लिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है एक बार जो मेरे चरणों की शरण ले लेता है मैं उसे निकालता नहीं हूं अपने चरणों से। तो भगवान कृष्ण ने प्रॉमिस किया है ना। दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि हम सोचते हैं भगवान के प्रॉमिस हमारे प्रॉमिस की तरह, हम तो किसी को कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं और फिर बोलते हैं मैंने बोला था क्या, कब कहा था, याद नहीं आ रहा था मुझे, शायद कहा होगा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, याद ही नहीं होता हमारे को, है ना, हमने कभी किसी को प्रॉमिस किया, पर भगवान का प्रॉमिस ऐसा प्रॉमिस थोड़ी होता है। अगर भगवान ने बोला है शिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छन्ति निगच्छति कौन्ते प्रति जानहि नामे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, अगर भगवान ने बोला है मेरे भक्त का नाश नहीं होता, इसका मतलब भगवान के भक्त का नाश नहीं होगा। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिउपासते तेषां नित्योभ्युक्तानां योगक्षेम वहम्यहम्। भगवान कह रहे हैं वहम में हम, आई कैरी, एक भक्त के पास जो नहीं होता मैं उसको देता हूं, आई कैरी, है ना, पर हमें इस बात पे विश्वास नहीं होता, हमें डाउट रहता है कि पता नहीं भगवान अपने प्रॉमिस पर खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे। तो आज के इस तात्पर्य में और आज के इस प्रसंग में श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में और प्रसंग में बताया गया कि किस प्रकार से व्यक्ति समय के काल के प्रभाव में आके क्या कर रहा है, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है, व्यर्थ गवा रहा है, या तो सुखी होकर या तो दुखी होकर, और दोनों की परिस्थिति में उसका घाटा है, उसका लॉस है। तो एक भक्त को क्या चाहिए, इन सर्कमस्टेंशियल चेंजेस से परेशान ना हो और ट्रस्ट, विश्वास रखे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और जो भी उसकी डिवोशनल सर्विस है, जो भी उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है डिवोशनल सर्विस की, उसको कैरी करते रहे। और भक्तों को चाहिए कि अपने डे डे को प्लान करें ये सोचते हुए दिमाग में कि टुडे इज माय लास्ट डे, आज मेरा आखिरी दिन है, तो मुझे किस प्रकार से अपना पूरा दिन व्यतीत करना है, कि अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो इसका मतलब क्या है, शायद ये प्रवचन आखिरी हो, शायद हमारा हियरिंग आखिरी हो, तो कितना अटेंटिवली सुनना है, कितना अटेंटिवली बोलना है, क्लियर होना चाहिए उनको। अगर ये विचार आप अपने दिमाग में रखेंगे तो हम 100% एफर्ट्स दे पाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की।